Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 481.
8th of December, year 2000, Chicago. My wife is Major Matsuda, Chicago.
Ya Ali Madad.
Hari Milone, اسلام مذہب کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے, جس کو ہم توحید کہتے ہیں. ہمارے اس اسلامی طریقے کے اندر الگ الگ قسم سے ہمیں یہ چیز سمجھائی گئی. توحید صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں, ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ توحید کیا ہے. یونٹی جو ہے وہ توحید ہے. خدا کو ایک ماننا توحید ہے, سچ بات ہے. مگر ہم اس کو زندگی میں عمل میں کس طرح سے لے کے آئے. ہمارا امام ایک ہے, ہمارا پیر ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے قرآن, ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی اکیلا ہے. ساری دنیا میں ایسا مذہب کوئی نہیں. ہم جب جماعت خانے میں اکٹھے ہوتے ہیں, میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 1500 یا اس سے زیادہ لوگ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن 1500 اینٹوں سے اگر ہم ایک مکان بناویں تو مکان ایک ہوتا ہے. جماعت کے جتنے فرد ہیں چھوٹے بڑے, وہ تمام مل کے گت بناتے ہیں. گت کہتے ہیں حاضر جماعت کو, اور جملہ جماعت کہتے ہیں ساری دنیا کی جماعت کو. مومنوں, ہم سب حضرت امام کے بچے ہیں, اس کے مرید ہیں. لیکن ہمارے جیووں کی لیول اونچی نیچی ہے. اگر ہم ایمان کی اور روحانی لیول کا حساب کریں, مثال دیتا ہوں, ایک سو سے لے کے ایک سو تک, تو کوئی پہلی لیول پہ ہے, کوئی دسویں لیول پہ ہے, کوئی 100 لیول پہ بھی ہے. یہ سب جماعت میں بیٹھے ہیں, اور اس جماعت کے اندر اگر کوئی بوڑھا ہے جس نے لگ بھگ 80 برس میری طرح نکال دیے لیکن ابھی تک مذہب کو نہیں سمجھا, تو دین دارو وہ شاید پہلی ہی لیول میں ہے. اور ہو سکتا ہے کسی ماں کی گود میں ایک مہینے کا بچہ سویا ہے تو وہ 90 یا 100 لیول پہ ہے. ہمارے جیوں کی لیول ہے. ہمارے مسلمان بھائی جس طرح سے چیزیں مانتے ہیں, ہم اس طرح سے نہیں مانتے ہیں. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر جب ہم علی پہ آتے ہیں تو وہ پھر ہٹ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو علی سے ہمارے ساتھ آتے ہیں تو امام جعفر صادق کے بعد وہ ہٹ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ امام مستنصر بلّہ تک آتے ہیں تو پھر چھوٹ جاتے ہیں, ہم چلے آتے ہیں, اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہماری جو جماعت ہے, اس جماعت کے اندر سمجھ اور ایمان کسی اور ہی قسم کا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر بھی بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, اور ہماری جماعت کے اندر کچھ برسوں سے تقریباً 70, 80 یا 100 برس سے ایک ایسی غلط امپریشن پڑ چکی ہے کہ جیسے کہ قرآن ہمارا نہیں, ہم قرآن نہیں پڑھتے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں اپنی واضح میں عرض کرتی آئی جماعتوں کو ہمیشہ کہتا ہوں, कि कुरान तो अली नबी के घर में उतरा है, कुरान के ऊपर जितना हमारा हक है वल्ला बिल्ला दूसरे मुसलमान भाइयों का इतना हक नहीं है, कुरान हमारा है। इस अदरदीन ने रोजी खाई कुरान लिख लिख के। इस अदरदीन जो थे वो कुरान लिखते थे, बड़े खुश खत थे, उनका खत बड़ा अच्छा था। अफसोस यह है कि हमारे पास उनकी कोई ऐसी मैनुस्क्रिप्ट कहीं से मिल नहीं सकी, लेकिन किस अदरदीन कुरान लिख के बेचते थे और नवाबों को और राजाओं को अमीरों को बेचते थे, बड़ी रकम लेते थे। इस अदरदीन की रोजी कुरान लिखते थे मिलती थी। कुरान हमारा है और कुरान पढ़ने से हमें इस्माइली मजहब का पता लगता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजाद साहब फरमाया, इस्माइली एसोसिएशन को यह फरमान किया मौला ने 1954 के अंदर कि तुम कुरान की तफसीर जो कुरान है उनको समझाओ, और एक ऐसा भी फरमान है कि तुम 10 अवतारों को कुरान में से निकाल के बताओ। क्या 10 अवतार कुरान में हैं? जब यह फरमान मैंने पढ़ा मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पीरों ने कुरान की तफसीर की है, गिनान जो है वो कुरान की समझ है। सूरतुल लैल की आयत है, अल्लाह खाता है कि मैं 10 रातों की कसम खाता हूं। कसम किस चीज की होती है? जो हमें प्यारी हो रही है, जिस चीज को हम मामूली समझते हैं, फजूल समझते हैं, उसकी कसम हम नहीं खाते हैं। आप किसी के साथ कुछ मामला करो और उसको बोलो मैं अपने बूट की कसम खा के कहता हूं तो वह हंसेगा। बूट की कसम होती अपने सिर की कसम खाओ। तो मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है कि कसम, और वो भी अल्लाह कसम खावे, तो वो कोई मामूली सी चीज तो नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? अल्लाह कहता है मैं 10 रातों की कसम खाता हूं। हमारे पीरों ने इन 10 रातों का जिक्र किया है, और ये 10 रातें 4 जुग जो हैं, हर एक जुग एक यूनिट का बना है। एक युग है 4,32,000 बरस का, ये यूनिट है। ये 4 युग होंगे या इसके पहले 4 कलप होंगे या इसके पहले 3 करण होंगे, सब जो यूनिट जो है वो 4,32,000 बरस है। ये 4 युग में 10 यूनिट है। पहले युग में 4 यूनिट है, दूसरे युग में 3 यूनिट है, चौथे युग में 2 यूनिट है, और इस कल युग में एक ही युग है, एक ही यूनिट है। ये कलयुग 4,32,000 बरस लंबा है, जिसमें अभी तक 7,200 बरस गुजर हैं। सिर्फ 7,200 बरस, 4,24,800 बरस बाकी है। कलयुग का इतना टाइम बाकी है, लेकिन चूंकि कलयुग के अंदर ही यह जमीन खत्म होएगी, इसलिए कलयुग की शुरू में आगाज में ही जो कुछ बनने वाले बनाव हैं वो बनने वाले हैं, और इनके अंदर आज हम जा रहे हैं। ये सभी मैं अपने इस बरस की राजों के दरमियान तकरीबन सब जगह इशारे कर चुका हूं। ये सदी बहुत बुरी है, ये सदी शैतान के जोर से भरी रहेगी, ये सदी गुनाहों से भरी रहेगी। गुनाह बढ़ते जाएंगे, क्राइम बढ़ते जाएंगे, जुल्म बढ़ता जाएगा, तमाम बदियां जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। ऐ मोमिनों, अगर आप खुदा की और खुदाई की अगर आप स्टडी करो तो आपको दो चीजें नजर आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है, इसको हम अरबी और कुरान की जबान में कहते हैं खैर, और जो नेगेटिव है वो कुरान की जबान के अंदर है नेगेटिव, उसको हम कहते हैं शर। इस अदर दिन माँ बाप ने पुरानी दुआ में लिखी थी, खैर पैदा करिए शर दफा करिए, तो सीखो जो दीदार नसीब करिए। खैर पैदा कर, नेकी पैदा कर, पॉजिटिव फोर्सेस पैदा करे मौला हमारे अंदर, और शर जो है उसको दफा कर। खैर और शर की लड़ाई है। जब से खुदाई बनी है और जब तक खुदा की खुदाई रहेगी, इसमें खैर और शर की ही लड़ाई है। और मजहब हमको इसलिए दिया गया ताकि हमको पता लगे कि खैर क्या है शर क्या है। जिसने अभी तक यह नहीं समझा कि खैर क्या है और शर क्या है वो मजहब को नहीं जानता। खैर को हम नेकियां कहते हैं, शर को हम बदियां कहते हैं। खैर को हम इबादत कहते हैं, शर को हम गुनाह कहते हैं। खैर और शर इसके ऊपर ये तमाम तकाजे चल रहे हैं। तो इस सदी के अंदर शर बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चूंकि खुदा से ज्यादा बड़ी और कोई चीज नहीं, चूंकि खुदा का सामने करने वाले की भी हद होती है, शैतान की कितना भी ताकतवर बने अल्लाह जैसा तो नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह खालिक अकबर है। तो जब ये शर बहुत ताकतवर हो जाएगा तो खुदा इसका सर तोड़ देगा। लेकिन जब ये शर ताकत वाला बनता है तो इसको हम तारीकी कहते हैं, डार्कनेस, क्योंकि जो जुल्म है वो डार्क है। वैसे भी जुल्मत को यानी डार्कनेस को अरबी जबान में जुल्मत कहते हैं। जुल्मत डार्कनेस है, जुल्मत गुनाह है, जुल्मत बेईमानी है, जुल्मत जुल्म है। और जुल्म का मतलब होता है अनजस्टिस। ये जो इनजस्टिस पैदा हो गया है ये शर की तरफ है, ये बढ़ता जाएगा। और ये जो शर की फोर्सेस है वो रात है, तारीकी है। आदमी का दिमाग तारीकी में चला जाता है और शैतान की फोर्सेस उसमें काम करती हैं। और आप देखो कि दुनिया में जितनी इविल फोर्सेस हैं, जिन्नात हैं, भूत हैं, इविल फोर्सेस हैं, वो तमाम रात ही को निकलती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में शर काम ज्यादा करता है। चोरियां रात को होती हैं, जना रात को होता है, और बदियां बुराइयां रात को होती हैं, तारीकी में होती हैं। तो तारीकी जो है वो रात है और वो गुनाह है। हर यूनिट के अंदर जब ये शर बढ़ जाता है, ये यूनिट 4,32,000 वर्ष का है, जब ये शर बढ़ता जाता है यानी तारीकी बढ़ती जाती है, तारीकी गहरी होती जाती है, तो फिर खुदा एक दिन उसके अंदर रोशनी पैदा कर देता है, सूरज पैदा करता है और शर मिट जाता है। इन 9 दफा ये यूनिटों में ये बन चुका है कि जिनको हम आमतौर पर 9 अवतार कहते हैं। अफसोस ये है कि हमारी आंखों में जो ऐनक लगी हुई है उसमें हमको जब भी कोई हिंदू की चीज नजर आती है, ओह ये हिंदू की चीज है, तो हम फिर उस पर जाते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि 9 अवतार हिंदुओं के हैं, मगर 9 अवतार की जो फिलॉसफी है वो तो इस्लाम से मिली हुई है। अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन की बातें की हुई हैं, और 9 अवतार की जो बातें हमारे पीरों ने कही हैं वो एवोल्यूशन है, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। खुदा ने कायनात किस तरह बनाई, तबका ब तबका बनाई। कुरान में अल्लाह कहता है 6 दिन मैंने लगाई है बनाने के लिए, 7वें दिन खुदा तख्त पर जाकर बैठ गया। 6 दिन कौन से? 24 घंटे के 6 दिन। एक खुदा का एक दिन है वो तो करोड़ों वर्षों का एक दिन है। यहां दिन का मतलब जो है यौम लिखा हुआ है उसका मतलब ये चांद सूरज की ये हरकत का जो दिन 24 घंटे, ये नहीं। यहां दिन से मुराद तबकात है कि 6 तबकों से खुदा ताला ने ये दुनिया बनाई, और हर तबका जो है उसके अंदर पहले तबके से दूसरे तबके में ज्यादा बुलंदी हुई, तरक्की हुई। तो खुदा ताला ने 9 रातें हो चुकी हैं। इन रातों के अंदर जो जुल्म और तारीकियां थी वो खत्म कर दिया अपने नूर की ताकत से। उस जमाने के अंदर भी खुदा का नूर था, आज भी खुदा का नूर मौजूद है, आखिरत के अंदर भी रहेगा। हर जमाने के अंदर खुदा मौजूद है, और खुदा जो है वो नूर है, खुदा नूर है। जब दुनिया के अंदर बदमाशियां, बुराइयां, बदियां, शर, नेगेटिव फोर्सेस पावर में आ गई तो खुदा ताला ने उनको तोड़ के खत्म कर दिया और अपने नूर की जहूरत कर दी। वो शख्स या वो ताकत के जिसने तारीकी को खत्म कर दिया वो खुदा का नूर है, और खुदा के नूर के बहुत से तरीके हैं। सूरज को भी देखो, ये खुदा के नूर का मजहर है। तो हर जमाने के अंदर ये बात बनी, 9 दफा ये बात बन चुकी। हमारे पीर हिंदुस्तान में नहीं आए थे, यानी सबसे पहले जो पीर आए थे सदगुरु नूर थे, इमाम हुसैन सिरबिल्ला अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर आए। लेकिन फिर सदगुरु नूर के आने से लगभग 80 वर्ष पहले, शायद 90 वर्ष पहले, मौलाना इमाम हाकिम अबू अली अलैहि सलाम जो थे वो खलीफा थे उधर इजिप्ट में, हमारे इमाम थे 16वें इमाम। एक दिन उन्होंने आम लोगों को इकट्ठा करके उसमें खुतबा दिया और इमाम हाकिम फरमाते हैं कि मैं नौ दफा दुनिया में जाहिर हो चुका हूं और 10वीं दफा मैं जाहिर होऊंगा। उस वक्त तो कोई हिंदू शास्त्र की बात नहीं आई थी, वहां पीर आए ही नहीं थे हिंदुस्तान में से, या हिंदुस्तान में से कोई मौला मौलवी ने आके इमाम हाकिम को कुछ सिखाया नहीं कि हम 10 अवतार की थियोरी को मानते हैं। मौलाना इमाम हाकिम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं कि मैं 9 दफा दुनिया पे जाहिर हो चुका हूं और 10वीं दफा मेरा मजहर तैयार है। अल्लाह ताला का ये इशारा, मैं 10 रातों की कसम खाता हूं, 9 रातें तो हो चुकी, अब 10वीं रात बाकी है, ये 10वीं रात में से हम पसार हो रहे हैं। 10वीं रात का जब एंड आएगा तो इमाम मेहदी के हाथ से आएगा, इमाम मेहदी जाहिर होंगे और दुनिया की बदियों बुराइयों का खात्मा करेंगे, दुनिया के अंदर सुकून और सुख पैदा कर देंगे, दुनिया के अंदर नेगेटिव फोर्सेस बर्बाद हो जाएंगी, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेंगी। पीरों ने हमको कहा है कि जब दैत कालिंगा के साथ लड़ाई करके मौला बिल्कुल दुनिया के अंदर सुख फैलाएगा तो 125,000 वर्ष सुधी रिखियों राज करे पक्षी महादिन मंडाए। यह आखिरी सदी है, इस सदी के बाद दुनिया के अंदर जब सुकून हो जाएगा तो सुकून को अंदर कोई दुनिया में क्राइम नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, जन्नत दुनिया के अंदर आ जाएगी। मेरी अरस ये सब कुछ कहने की यह है कि मिलो ने मिलावो रिखी सर, जिस तरह से अल्लाह एक है उसकी यूनिटी है, इसी तरह से जमात जो है वो यूनिट है, भले जमात में 10,000 आदमी है मगर एक यूनिट है। और सारी दुनिया की जमात जिसको हमारे पीरों ने जुमले जमात कहा है, वो जुमलो जमात सारी दुनिया के 20 करोड़ के 22 करोड़ के जितने भी करोड़ सॉरी मिलियन की बात करता हूं, 2.5 करोड़ इस्माइली हैं, 24-25 मिलियन इस्माइली हैं, वो एक यूनिट है, हजर इमाम एक यूनिट है, पीर एक यूनिट है, और शाह और पीर मिलकर एक यूनिट है, जमात एक यूनिट है, लेकिन शाह पीर और जमात एक यूनिट है, जमीन और आसमान एक यूनिट है। हमारे ज्ञानों की फिलॉसफी जो है वो बड़ी गहरी है, यहां आपस में मिलो, एक दिल मिलते बढ़ो। पहले वक्त में तब नबी दुआ पढ़ाया करते थे तो मुखी साहब से इजाजत ले पढ़ाने वाला, मुखी साहब जो अमर शाह पीर जो, तो फिर वो बोलने वाला बोले हेकमान छोलाम मेरा दुआ पढ़ो मुखी साहब, दुआ पढ़ो कामरी साहब, दुआ शुरू जो थी, लेकिन क्या बोलता था, हेकमान छो अल्लाह मेरा, एक दिल हो जाओ, एक ख्याल हो जाओ, दुआ पढ़ो, ये एक यूनिट है, ये वहादियत है, ये तौहीद है कि हम जमात में बैठ के एक ही ख्याल रखते हैं सब मिलकर, अगरचे हमारे बदन अलग अलग हैं मगर हमारा ख्याल मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि हम सब झुका देते हैं, ये यूनिटी है। ये मिलना सिर्फ हमारे मजहब की एक बड़ी खूबी के सिवा एक और चीज क्या है कि हमारे पीरों ने हमें गिनानों के अंदर हमारी फैमिलीज के लिए भी कहा है, एक फैमिली है 10 जने हैं मगर वो एक फैमिली है, एक यूनिट है, एक फैमिली मिलकर जमात बनाती है और एक जमात मिलकर जुमला जमात बनाती है। इस तरह से हमारे मजहब की खूबी में यह है कि हम लोग आपस में मोहब्बत से रहें, मोहब्बत से रहें। इस सदी की बदियों बुराइयों का मैं जिक्र कर रहा था तो मोमिनों मेरे दिल दुखता है ये जाहिर करने के अंदर कि मैं देख रहा हूं हमारी नॉर्थ अमेरिका की जमात के अंदर बेदिली बढ़ रही है, मियां बीवी के झगड़े बढ़ रहे हैं, भाइयों भाइयों के झगड़े बढ़ रहे हैं, पैसे की मोहब्बत ने दो दिलों को अलग कर दिया, जुदा कर दिया, दुनियादारी की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया के ख्यालात की वजह से, लालच की वजह से हम अपना मजहब भूल जाते हैं और बदियों बुराइयों में चले जाते हैं, शैतान के जोर बहुत है और हम उस नेगेटिव ग्रुप में चले जाते हैं, पॉजिटिव ग्रुप में से खैर में से निकल के शर में चले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे इस किस्म के रिपोर्ट भी आई, किससे भी आई कि मैं उनके अंदर दखल दे के उनके मोहब्बत पैदा करूं, मियां बीवी के झगड़े बढ़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हज़रत इमाम ने हमको यूनाइटेड फैमिलीज के लिए कहा है, भले हम अमेरिका आए हैं। मैंने आपको अपनी पहली आवाज में कहा था कि अमेरिका, जो कि अमेरिका का जो लफ्ज मैंने कह दिया है, हकीकत में नॉर्थ अमेरिका है, इसमें बड़ा हिस्सा कनाडा का है। हज़रत इमाम ने जो जमात बसाई तो कनाडा में बनाई, उधर बसाई। अमेरिका में हज़रत इमाम ने जमात नहीं बसाई, जमात आ गई, और आ गई तो मौला ने कबूल किया है। मुझे याद है जिस इसमें जब मौला आए तो मौला के पास किसी ने कहा कि या मौला, आपने इतनी दफा कहा है मेक कनाडा यूर होम, मेक कनाडा यूर परमानेंट होम, मगर आपने कभी अमेरिका के लिए नहीं कहा। तो न्यूयॉर्क के वो जो फंक्शन थी जिसमें मौला ने ये कहा कि अच्छा मैं अब कहता हूं मेक अमेरिका यूर होम, लेकिन हकीकत में जो जमात बसाई तो कनाडा में बसाई। और उसमें भी भेद और राज है, इमाम के हर काम में कोई ना कोई राज होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आज 1 लाख इस्माइली बसाए, कि आज 100 बरस पहले तो क्या, 50 बरस पहले, 30 बरस पहले कुछ ना था, और जमात के यहां बसाने के कारण क्या, वजह क्या? वजह बताऊं, उसके पहले मेरा यह कहना है कि हमारी फैमिलीज, हमारे स्ट्रक्चर, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी आदतें जो हैं वो यहां आके हम भूल जाएं, ये मामला ठीक नहीं है। ये क्रिश्चियन कंट्री है, हमको उनकी आदतें नहीं लेनी, हम इधर कोई मकसद से आए हैं। और हमारे मकसद के अंदर एक मकसद ये है कि जमात जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में जमात की मेजॉरिटी जमात उधर, उसके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आज भी उधर की हालत ऐसी है कि परसेंटेज ऑफ एजुकेशन हमारी जमात का बहुत थोड़ा है, और वहां के हालात ऐसे हैं कि दूसरी कौमें हमारे से ज्यादा पावरफुल हैं, और जो हम उधर करना चाहते हैं आराम से नहीं कर सकते। इसलिए यहां इस मुल्क के अंदर ये एक कॉमन चीज है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो और हायर एजुकेशन तक, उसके लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं। कनाडा के अंदर तो बिल्कुल फ्री है एजुकेशन, यहां भी किसी हद तक फ्री है। एजुकेशन का पूरा लाभ फायदा लेने के लिए ये एक वन ऑफ द रीजंस। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यह खबर देना चाहता हूं, खुशी होता हूं कि आज हमारी 56,000-57,000 की जमात जो कनाडा के अंदर है, हर साल 400 ग्रेजुएट्स निकलते हैं हमारी जमात में, हर साल 400 ग्रेजुएट्स डिफरेंट लाइंस के अंदर से। एक बरस में 400 होते हैं, 10 बरस के बाद शायद 500 हो जावे, 20 बरस के बाद 600 हो जावे, 50 बरस के बाद कनाडा की जमात में 90% नहीं तो 60% तो सारी जमात ग्रेजुएट होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में नहीं बन सकती। इसके अलावा एक और चीज ये है कि यहां रोजी कमाने के लिए आसानियां हैं कि जो वहां नहीं। आज देखो मैं आपको मिसाल दूं, हमको हज़रत इमाम ने फरमाया कनाडा के अंदर $35 मिलियन हमको चाहिए, अमेरिकन डॉलर, हमारे 45 मिलियन होते हैं, 35 मिलियन इधर से चाहिए IIS के लिए। इसका हिसाब करो तो 50 रुपए के हिसाब से पाकिस्तान के 50-52 और इधर के इंडिया के 45-46 और तंजानिया के 800 शिलिंग का $1 मिले, युगांडा में 1300 शिलिंग का $1 मिले, केनिया के अंदर 70 शिलिंग का $1 मिले। उन शिलिंगों से और उन रुपयों से हज़रत इमाम क्या बनाएगा उधर? डॉलर चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉलर हमारे मौला के कदमों में हम रखते हैं तो उससे दूसरी जमातों को वो फायदा पहुंचाता है। हमारे ही डॉलर काम नहीं आते, मौला खुद कितना खर्च करता है उसकी फिगर में देने के लिए तैयार नहीं, वाला कि शायद मुझे पूरी तरह पता भी नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूं कि नॉर्थ अमेरिका का जो जमात है उसके अंदर से हम इमाम को, जो दुनिया की भी हिसाब से ये जो मेहमानी करते हैं, ये जो हम जमात खाने खर्च करते हैं, हम नांदी देते हैं, मेहमानी करते हैं, रस्म देते हैं, ये वो चीजें हैं कि जो मजहब को मजबूत करने की चीजें हैं। ज़कात का मतलब क्या था? नबी को ज़कात देने का मकसद ये था कि इस्लाम की इशायत की जाए, और उस इशायत के लिए मुअल्लिमों को नौकर रखा गया और तरीके बताए गए, मिशनरी हैं, भगत हैं, काउंसिल हैं, तरीका बोर्ड है, और हमारे अंदर हेल्थ बोर्ड है, हमारे अंदर हॉस्पिटल्स हैं, इन तमाम चीजों के अंदर खर्च होता है। जमात एक जिस्म है, मौलाना सुल्तान ने मुझसे फरमाया जमात मारो अंग छे। देखो फिर यूनिट की बात आ गई, जमात जो है वो हजर इमाम का जिस्म है। इस जिस्म को खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, बूट भी चाहिए, टोपी चाहिए, पछेड़ी चाहिए, फ्रॉक चाहिए। मैं खाली बात करता हूं कि हमको क्या चीजों की जरूरत है। तो हमारे इस जमात के अंदर जो हम यहां अपने मौला के कदमों में रखते हैं दीनदारों, वो हमारे गरीब जमातों को काम आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा। इलावाजी इसके ये भी है कि हमारी जमात चूंकि जोरदार बन रही है, बढ़ रही है दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर भी, जैसा कि आज बन रहा है कि हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन छोटी उम्र के जवान कैनेडा से, अमेरिका से दो दो तीन तीन बरस की सर्विस के लिए ताजिकिस्तान जाते हैं, सलमिया जाते हैं, दूसरी जगहों के ऊपर जाते हैं, अपनी फ्री सर्विस देते हैं। तो यहां हमने आके एजुकेशन ली, हमने टेक्नोलॉजी सीखी, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये हमारी दूसरी जमातों को काम आती है। अब यहां इन जो मकसद हम लेके आए कि हम इधर आके जिस तरह बहुत से स्टूडेंट उधर से इंडिया पाकिस्तान से निकल के आते हैं, इधर डॉलर कमा के माल बाप को भेजते हैं, यही सेम थीम के ऊपर आप अगर कभी सोचो तो यहां की जमात इसलिए आई कि दूसरी जमातों को दुनिया में उठा सके, लेकिन इधर आके हम दुनियादारी में पड़ जाएं और पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव फोर्सेस में पड़ जाएं, हम बदियों बुराइयों में पड़ जाएं, मजहब भूल जाएं, रूहानियत कमजोर हो जाएगी। और जो ही रूहानियत कमजोर हो जाएगी नेगेटिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। हर रोज जमात खाने आओ, कुछ भी हो गए जमात खाने आओ, कभी शाम को नहीं बन सकता दीनदारो सुबह आओ। हमारे ऊपर ये एक बोझ है, हमने वादा किया है कि कम से कम एक दफा इस जमात खाने में आके, इमाम के घर में आके हम अपने मौला को सलाम तो करें, या मौला तेरा शुक्र गुजार हूं कि तूने मुझे इस हालत में बताया। बैक होम आज से 10 बरस पहले, आज से 20 बरस पहले अपनी जिंदगियों का, अपने फैमिली का ख्याल करो। छोटी छोटी कोठड़ियों में रहते थे, यहां बंगलों में रहते हो, वहां चलने के लिए पांव में जूतियां नहीं थी, यहां मोटरें पड़ी हैं, जो कपड़े वहां पहनते थे उससे कई अच्छे कपड़े यहां पहनते हो, उधर खर्च करने के लिए 2 रुपए नहीं थे, यहां आपके खीसे में 200 डॉलर हैं। हमारी हालत बदल गई, हमारा हाव भाव बदल गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई, ये सब उस मनी धनी मेहरबानी करता है, रहमतें करता है जो हमें मिला है। अब हम मौला को इधर आके भूल जाए, मेरी दुकान है, मेरी मकान है, मेरी जॉब है, ये है वो है, कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, लेजी हो गए हैं, ये मामला ठीक नहीं। और चूंकि नेगेटिव फोर्सेस बढ़ गई, शर बढ़ गया, शैतान बढ़ गया, दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई, खैर कम हो गया, तो हमारे अंदर फिर क्या है, गरूर पैदा होता है, ईगो पैदा होता है, सेल्फिशनेस पैदा होती है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। आबिदों के अंदर झगड़े नहीं होते, शैतानी फोर्सेस के अंदर जाने वालों के अंदर झगड़े हैं। हलीमी टॉलरेंस जिसको कहते हैं निकल गई, पेशेंस सबक निकल गया, तमाम अच्छी बातें कम हो रही हैं, बुरी बातें बढ़ रही हैं, ये जुल्मत है। और इस जुल्मत से बचाने के लिए इमाम ने बहुत से रास्ते निकाले। आज एक रास्ता ये है कि हमारे वास्ते उसकी दुआएं बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत दुआएं देता है ताकि हमको बचाता रहे, लेकिन हमको भी साथ देना चाहिए, इबादत करो, बंदगी करो, अपनी कमाई में से 10% बराबर दो, बोला का हक है, हमारे ऊपर कर्ज है, भले मेहमानी कम करो कोई बात नहीं, लेकिन 10% बराबर दो। वो आदमी जो 10% नहीं देता और मेहमानियां करता है, मेहमानी का जरूर सवाब मिलेगा, लेकिन 10% का कर्ज सिर पर मौजूद रहेगा। 10% लाजिम है, मेहमानी लाजिम नहीं। हां मोहब्बत से मेहमानी दी जाती है, लेकिन पहले उसका हक तो अदा करो, पहले 10% दो, फिर जो मेहमानी करोगे तो खुश होगा। आपने किसी से $1,000 कर्जा लिया है, आप हर दफा वो मांगने आवे महीने के बाद तो उसको चाय पानी पिला दो, थोड़ी उसको कुकर खिला दो, मगर पैसे ना दो तो वो क्या करेगा, माफ कर देगा, कर्जा तो खड़ा है सिर के ऊपर, 10% है वो कर्जा है। और अपनी औलाद को छोटी उम्र से सिखाओ कि 10% दो। याद रखो दीनदारो, मैं 10% पे आवाज नहीं कर रहा, लेकिन दसवंत हमारे मजहब की फाउंडेशन की स्ट्रांग चीज है. दसवंत और दुआ सुल्तान अहमद शाह फरमाया कि तुम्हारे ईमान की फाउंडेशन है. तीन वक्त की दुआ बराबर होनी चाहिए, दसवंत बराबर होनी चाहिए. दसवंत देने से बरकत मिलती है. मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा कि पक्का दसवंती हो गए और जमीन पे गिर गया. खुदा की कसम, अगर आप पक्का दसवंती हैं, मौला आपको जमीन पे कभी गिरने नहीं देगा. यहां जमीन पे गिरने का मतलब है कि आप मोहताज हो जाओ, कभी नहीं होगे. मौला अपने बच्चे को हाथ से पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं से उसको मदद भेज देगा, क्योंकि जो दसवंती है वो मौला का आशिक है. दसवंती मौला का कलेजा है. दसवंती को मौला प्यार करता है. दसवंत मौला का खाना है. और अगर हमने दसवंत कम कर दी है, बंद कर दी, तो अपने मौला के मुंह से निवाला खींच लेते हैं. मौला के मुंह से निवाला खींच लेते हैं जो दसवंत नहीं देते, क्योंकि दसवंत मौला का खाना है. हमारा मजहब आसान भी है, मुश्किल भी है, मगर जिस वक्त इस पे चलो तो आसानियां ही आसानियां हो जाती हैं. दसवंत में पक्के रहो, आपकी मुश्किलें मुसीबतें दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि मौला की दुआएं मिलती हैं. अल्लाह ताला ने मोहम्मद को फरमाया कि जब तुम जकात लो तो मोमिनों को दुआ करो. मुखी के हाथ पे जब हम, या कमरिया या मुखिया नहीं, कमरिया नहीं के हाथ पे जो मौला के एजेंट्स बैठे हैं, हम जब दसवंत के पैसे रखते हैं तो उसी वक्त मौला को पहुंचते हैं, और जो दुआ उनके मुंह से निकलती है वो हकीकत में मौला की दुआ निकलती है. दसवंत बराबर दो, इबादत करो अपनी रूह को उठाने के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए. आखिर हमें एक दिन मर जाना है. ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये मोटरें बंगले इधर रह जाएंगे, तन के कपड़े भी उतार लेंगे, जेवरात उतार लेंगे, घड़ी पहनी होगी तो उतार लेंगे, अंगूठी होगी तो उतार लेंगे, एक लपेट के दो गज कपड़े के अंदर उसको दफन कर देंगे, सब कुछ रह जाएगा. तो इस दुनिया के लिए कि जो हम यहां छोड़ जाने वाले हैं, अपनी आकबत खराब नहीं करनी चाहिए. मिलो अने मिला दो, अपने घरों के अंदर, अपनी फैमिलीज के अंदर, अपने यार दोस्तों के अंदर, जमात के अंदर, हर जगह मोहब्बत और इत्तेफाक से रहो. हर जगह जहां भी आप जाओ खुशियां लेके जाओ, लड़ाई झगड़े लेके नहीं जाना. पीस, अल्लाहुम्मा अंत सलाम, अरे हमारे मौला तू सलाम है. सलाम कहते हैं पीस को. अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम, सलामत रहो. ये जो हमारे तीन वक्त रोज पढ़ते हैं ये दुआ, वमिन का सलाम, अलैका यरजऊ सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, अरे हमारे पालने वाले हमको सलामती के साथ रखना, हमको सलामती में दाखिल करना. ये जो सलामती है ये पीस है. अल्लाह ताला कुरान करीम तरीन में फरमाता है कि एक नफ्स अम्मारा है, जो दुनिया का खाना पीना है, शराब मार धार गुस्सा, एक है नफ्स लवामा कि जो हम अपने दिल को खुश करते हैं अपनी आरज़ूएं पूरी करने के लिए. लेकिन अल्लाह कहता है एक नफ्स मुतमईना है, आला दर्जे का नफ्स कि जो हमेशा मुतमईन है, उसे कोई लालच नहीं, उसे कोई दुख नहीं, उसकी कोई आरज़ू नहीं. जो खुदा देता है आमन्ना व सद्दकना उसके ऊपर चलता है. ये नफ्स मुतमईना है और ये जमात नफ्स मुतमईना है. जब जमात में आते हो तो सुल्तान ने शाह फरमाया तुम मेरा बदन हो. हमारे ईमान का बदन बन जाते हैं, पाक बन जाते हैं. और जमात में आके अगर हम कमजोर हैं तो हमारे से ज्यादा ताकतवर लोग इधर बैठे हैं और उनके साथ उनकी भी दुआ होती है, हमारी भी होती है. तो सारी जमात की जो दुआ है वो बड़ी पावरफुल चीज है. जमात के अंदर आके अगर आपको दुआएं मिलती है तो आपके दुख वगैरह सब दूर हो जाते हैं. दिनदारो आज मेरी आखिरी वाइज है यहाँ के इस दफा की ट्रिप की. शुक्रवार का दिन है. मैं इससे ज्यादा लंबी आवाज नहीं करता हूँ. मौला आपको आबाद और सुखी रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, दो जहान की बरकतें देवे, बदियों बुराइयों से बचा के रखे, शैतान को दूर रखे, मौला ने हजर ईमान कलजू की हवाओं से बचावे, खैर देवे शर से दफा रखे. मौला ने हजर ईमान आपको आपकी आल औलाद को तीनों दुनिया की नियामतें देवे, बरकतें देवे, नवाजशें देवे, बख्शिशें देवे. मौलाना हज़रत इमाम खुशियां देवे. हज़रत इमाम आपकी हर नेकी पूरी करे. सुखी आबाद. ऐसा